नमस्कार। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है और जितने हर्ष उल्लास से हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मनाएंगे उतना ही हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। संसार में लोग अपने जन्म दिवस को मनाने के लिए बहुत आतुर होते हैं, लेकिन वास्तव में हमें भगवान के जन्म दिवस को और भगवान से संबंधित जो भी उत्सव हैं उनको मनाने के लिए उत्सुक होना चाहिए। इससे हमारा आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है और संसार से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है हृदय में। भगवान श्री कृष्ण को जानना तत्वतः हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में घोषणा की है, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो तत्वतः मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है श्रद्धा से, तो इस व्यक्ति को पुनः यह संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, वरन वो मेरे धाम की प्राप्ति करता है, मेरे निजी संग की प्राप्ति कर लेता है। तो मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम में जाकर उनका संग करना, उनके नित्य लीलाओं में शामिल होना, ये हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। लेकिन हम ये संसार में इतने मग्न हैं, हमारे छोटे छोटे आशाओं में, हमारे समस्याओं में इतने अटक जाते हैं कि इस ऊंचे उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वेद व्यास जी को प्रेरणा दे दी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए। श्रीमद् भागवत के अलावा और किसी भी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनिकृतये किं वा परः ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते कृतकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत के उपस्थिति में और कौन से ग्रंथ की आवश्यकता है, वेदव्यास जी पूछ रहे हैं। केवल इस ग्रंथ का अध्ययन करने से, श्रवण कीर्तन करने से जल्दी ही शीघ्र ही हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो जाते हैं और फिर हमें भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति का बहुत मधुर जो स्वाद है वो चखने में मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत ये कोई साधारण किताब नहीं है क्योंकि इनमें कृष्ण का वर्णन है, इनमें कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में चर्चा है, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का उपदेश है, जिनको सुनकर हमें ये प्रतीत होगा, हृदय में अनुभव होगा कि संसार में जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए हम इतने व्यस्त हैं, मग्न हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ये चीजें वास्तव में कितने तुच्छ हैं। और कृष्ण भक्ति ही वास्तव में एकमात्र सत्य है। अनर्थ पशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। सारे अनर्थों का निवारण करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की है भगवान ने। और श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला का वर्णन जो आता है, अगर उसको हम ध्यान से सुनेंगे, इसका चिंतन मनन अगर हम करेंगे, तो सारे अनर्थ जो हमारे हृदय में हमें परेशान कर रहे हैं वो बहुत दूर चले जाएंगे और लौट कर नहीं आएंगे। गंगा जी के तट पर 5000 साल पहले परीक्षित महाराज को यह सुअवसर प्राप्त हुआ कि सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवत सुनाया और ये प्रवचन सुनने के लिए जगह जगह से लोग आए थे, ऋषि मुनिगण एकत्र हुए थे। ऐसा नहीं है कि केवल इस पृथ्वी के अलग अलग जगह से लोग आए थे, लेकिन सारे ब्रह्मांड भर से लोग आए थे। और ऋषि मुनिगण 7 दिन और 7 रात लगातार शुकदेव महाराज का प्रवचन सुन रहे थे, और परीक्षित महाराज ऐसे प्रश्न कर रहे थे जिससे शुकदेव महाराज के हृदय में कृष्ण के प्रति बोलने का उत्साह बढ़ते गया। ऐसे 6.5 दिन पूरे बीत गए। 6 दिन बीतने के बाद भी परीक्षित महाराज थक नहीं गए। उनके हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला के प्रति आसक्ति बढ़ती गई। ये कृष्ण कथा या कृष्ण लीला की खूबी है कि जितना भी हम इस रस का पान करते हैं उब नहीं जाते हैं, इसका रस का पान करने में अधिक से अधिक आनंद होता है, आनंद की वृद्धि होती है। लेकिन संसारी चीजों के बारे में हम बातचीत करते रहते हैं तो बहुत जल्दी उब जाते हैं, क्योंकि ये जड़ वस्तु है, जड़ कथा में कोई रस नहीं है। लेकिन कृष्ण कथा चिन्मय कथा है, आध्यात्मिक जगत की कथा है, इसलिए इसमें थकावट की कोई बात नहीं है। इसलिए तो परीक्षित महाराज और वहां पर एकत्र जो ऋषि मुनिगण थे वो 7 दिन लगातार बिना खाए बिना पिए केवल कृष्ण कथा का पान करते रहे। और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बताया कि महाराज जी, आप ये मत सोचिए कि मैं भूख से तंग आ गया हूँ, प्यास से परेशान हूँ, इसलिए आपको जल्दी इस कृष्ण कथा को की समाप्ति करनी चाहिए। नहीं, आप बोलते जाइए, क्योंकि जब तक मेरे कर्णों से मैं ये कृष्ण कथा का पान करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये भूख प्यास जो नाम की चीजें हैं मुझे अनुभव हो ही नहीं रही है, क्योंकि कृष्ण कथा इतना रसमय है, इतना स्वादिष्ट है कि ऐसा लगता है कि कथा चलती रहे। तो ऐसे वक्त पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि आपने इतने सुंदर वर्णन अभी 6 दिन तक किए हैं, आपने ये भी बताया कि 2 प्रकार के वंश होते हैं क्षत्रियों के, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए और चंद्रवंश में आपने बताया कि यदुकुलपति श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो मैं यदुकुलपति श्री कृष्ण के बारे में और सुनना चाहता हूं, तो कृपा करें और हम सब के लिए और विशेष करके मेरे लिए कृपा करके कृष्ण की कथाएं आप सुनाइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित की के उत्साह को देखकर, और परीक्षित महाराज आगे कृष्ण कथा का गुणगान करने लगे, कृष्ण कथा के महिमा का गुणगान का वर्णन करने लगे और कहने लगे, निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात् भवौषधाश्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज ने आश्वासन दिलाना चाहा सुखदेव महाराज को कि आप बोलते जाइए, और वो कहने लगे, निवृत्त तर्षय उपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्, कि ये जो कृष्ण कथा है ये मन के लिए, हृदय के लिए, कर्णों के लिए अभिरामात् बहुत ही आनंददायक है और ये बहुत रसमय है, स्वादिष्ट है ये। और जैसे ये कथा बढ़ती जाती है हमारे हृदय के अनर्थ तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो लोग निवृत्त तर्षेर, जिनको संसार को भोग करने की जो तृष्णा है वो नष्ट हो चुकी है, केवल वही लोग इस कृष्ण कथा का पान करने में समर्थ होंगे, अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। कृष्ण कथा सुनना 2 घंटे कोई आसान बात नहीं है कोई संसारी व्यक्ति के लिए। 2 घंटे टेलीविजन के सामने बैठकर सिनेमा देखना बहुत आसान है, भक्तों के लिए कष्ट कठिन है, लेकिन संसारी लोगों के लिए बहुत आसान है। लेकिन जब कृष्ण कथा के सभा में आते हैं तो वहां पर 2-4 घंटे बैठना परेशानी की बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि भोग की तृष्णा अभी तक मिट नहीं गई है। संसार को भोग करने की जो इच्छा है मनुष्य के हृदय में बहुत प्रबल होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं इस भोग की तृष्णा को मिटाऊं, खत्म कर दूं, और इस भावना को लेकर अगर वो भक्तों की सभा में आता है, कृष्ण कथा सुनता है, तो फिर भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है और ये निवृत्त तरशेर बन जाता है। फिर ऐसे अवस्था में ये कृष्ण कथा उसके लिए एक औषध बन जाती है। किस लिए औषध? भव औषधाज। परीक्षित महाराज बताते हैं कि ये भौतिक संसार को भव कहते हैं। भव मतलब क्या? भव मतलब हो जाना। क्या हो जाना? बीमार हो जाना, बूढ़ा हो जाना, मर जाना, फिर से जन्म लेना। ये हो जाने की बात जो है इसको भव कहते हैं संस्कृत में। तो ये भव का मतलब है संसार में जन्म मृत्यु का चक्कर। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये कृष्ण कथा जो है ये सही औषध है, सही दवाई है इस भवसागर के बीमारी के लिए। बीमारियां कई प्रकार के हो सकती हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी इत्यादि, लेकिन भवरोग जितना कोई भयंकर बीमारी अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि यह भवरोग ही यही मूल बीमारी है अन्य सारे बीमारियों के लिए। जब भवरोग को हम मिटा देंगे तो सारे अन्य बीमारियां खुद ब खुद मिट जाएंगी, क्योंकि शरीर ये जो भौतिक है इसकी आवश्यकता नहीं होगी। हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा भगवान के धाम में, जहां के कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात। मनो अभिरामा बहुत सुंदर मधुर लगता है मन के लिए, इसलिए हे सुखदेव महाराज जी आप कथा बोलते जाइए बोलते जाइए। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण कथा में का श्रवण नहीं करना चाहेगा? और इस प्रश्न का जवाब खुद परीक्षित महाराज इसी श्लोक पे देते हैं। क्या कहते हैं? पुमान विरज्येत विना पशुग्नात। केवल जो पशुग्न है ऐसा ही व्यक्ति कृष्ण कथा का श्रवण नहीं कर पाएगा। पशुग्न मतलब क्या है? पशु की हत्या करने वाला, मतलब जो बहुत क्रूर व्यक्ति है, पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाता है, बहुत क्रूर आदमी है। तो क्रूर हृदय में क्रूर हृदय के भीतर कृष्ण कथा, भगवत कथा, भगवत भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। और पशुग्न का यह भी मतलब है कि जो व्यक्ति भोगवाद में इतना रम जाता है कि उसे अपने आध्यात्मिक हित के बारे में सोचने के लिए कोई ना तो समय है ना तो इच्छा है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव महाराज जी आप इतने कृपालु हैं कि सबसे बड़े बीमारी भवरोग के लिए आप इतना सुंदर औषध दे रहे हैं। हम देखते हैं कि संसार की बीमारियों के लिए औषध कभी कभी बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपकी दवाई जो है इतनी मीठी है, स्वादिष्ट है कि ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा बीमार हो ताकि दवाई लेते रहे। ये औषध इतने बढ़िया है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव महाराज से कि कृपा करके कृष्ण के जीवन के बारे में आप हमें सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और बोलने लगे कि बहुत साल पहले की बात है कि पृथ्वी माता बड़ी परेशान थी। आपने थोड़ी देर पहले सुंदर नाट्य लीला आपने देखा, जहां भक्तों ने पृथ्वी माता के दशा कुप का प्रदर्शन किया और पृथ्वी माता बड़े परेशान थे क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत बढ़ गए थे। राजा जो हैं योग्य राजा नहीं रहे थे और प्रजा का फायदा उठाकर उनको केवल अपनी इंद्र तृप्ति में रुचि थी। तो जब ये पाप का बोझ बढ़ गया तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी से कृपा याचना की, कहा कि या कृपा करके आप मेरे ऊपर जो पाप का बोझ है वो मिटाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस कार्य के लिए मैं भी समर्थ नहीं हूं, हमें सब विष्णु के पास जाना चाहिए। सारे देवता गण फिर क्षीरोदक सागर के तट पर गए, विष्णु से कृपा याचना की, पुरुष सुक्त प्रार्थना किए। वहां टेलीफोन कनेक्शन अंदर से विष्णु का ब्रह्मा जी के हृदय से था और कोई देवतागण सुन नहीं पाए, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के विशेष भक्त हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यंत यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो ये सत्यम परम धीमहि जो भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, उनके ऊपर ध्यान कर रहे थे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को ही प्रेरित किया था इन्हीं भगवान विष्णु ने कि सृष्टि की रचना कैसे करनी है। तो ब्रह्मा जी जब ध्यान में बैठे क्षीरोदक सागर के तट पर, तो वहां विष्णु ने उनको अंदर से आवाज दी उनके हॉटलाइन पर और कहा कि देवताओं को कहो कि वो चिंता न करें, भयभीत न हो, मैं बहुत ही जल्दी पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूं, और सारे देवी देवताओं को कहो कि वो भी मेरी लीला में सहायता करने के लिए यदुकुल में जन्म लें और उनके पत्नियां भी जन्म लें ताकि मेरी लीला में सहायता कर सकें। ब्रह्मा जी ने संदेश दिया देवी देवताओं को, देवी देवता बड़े संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए कि अभी भगवान आएंगे, हमारे कष्टों का निवारण करेंगे, और बहुत ही जल्दी अपने अपने स्थान में यदुकुल के परिवारों में वो जन्म लेने लगे। उधर शूरसेन के राजा के पुत्र वसुदेव का विवाह हो रहा था देवकी से। देवकी को जब वसुदेव घर ले जा रहे थे तो कंस जो कि देवकी का भाई था रथ चला रहा था, और जैसे ही रथ चला रहा था अचानक आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, तू नहीं जानता है कि जिस बहन को तू इतने प्रेम और लाड़ प्रेम से ले जा रहा है उसके पति के घर में, इसी बहन का आठवां पुत्र तेरी हत्या का कारण बनेगा। तो आकाशवाणी खत्म हो चुकी हो गई और उस समय कंस का असली रूप प्रकट हुआ। कंस तो था बड़ा असुर, असुर जो होते हैं बड़े क्रूर हृदय के होते हैं, और जब कंस ने देखा कि ये आकाशवाणी के ध्वनि मेरे को चेतावनी दे रही है कि इसका आठवां पुत्र तेरी हत्या करेगा, तो तुरंत कंस ने अपनी तलवार उठाई देवकी की हत्या करने गया। उस समय वसुदेव ने प्रार्थना की, कहा कि यह आपको शोभा नहीं देता, आप भोज वंश के राजा हो, इसलिए मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो भी पुत्र मेरे होंगे मैं आपके हवाले कर दूंगा। अब ये आकाशवाणी देने वाले कौन थे? वो देवतागण थे। देवतागण चाहते थे कि कृष्ण जल्दी से जल्दी अवतार ले लें। अगर कंस के हृदय में देवकी के प्रति प्रेम रह जाता तो फिर वो हत्या नहीं करते बच्चों की। तो देवतागण चाहते थे कि भगवान जल्दी से जल्दी आ जाएं। और एक बात है जो एक रहस्य है कि देवतागण चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये लीला आगे बढ़े। जब अंततः वसुदेव ने अपनी बातों से कंस को संतुष्ट कर दिया, कंस ने देवकी के बाल छोड़ दिए और वसुदेव देवकी अपने घर चले गए और उनका पुत्र हुआ, तो उस समय कंस के पास वसुदेव आए अपना पुत्र लेकर कि जैसे मैंने वचन दिया था वैसे मेरा पुत्र मैं आपके हवाले कर रहा हूं। उस समय कंस का हृदय पिघल गया। वसुदेव जैसे भक्त की के गुण ऐसे होते हैं कि कंस जैसे हृदय, कंस जैसे असुर का हृदय भी पिघला देते हैं। तो कंस ने कह दिया ठीक है, वैसे तो आकाशवाणी ये थी कि आपका आठवां पुत्र मेरी हत्या करेगा, ये तो आपका पहला पुत्र है, तो कोई बात नहीं आप चले जाओ वापस। और उस समय कंस के सारे जो पार्षद थे वो आए, कहने लगे कि ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि देवतागण जो हैं आपके शत्रु हैं और वो तो जन्म ले चुके हैं यदु परिवार में, और ये पहला बच्चा भी कृष्ण हो सकता है। नारद जी ने आकर भी यही बात कंस से कही, तो कंस ने तुरंत वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया और बंद करके पहले बालक को जिसका नाम कीर्तिमान था उसको पत्थर से पीटकर खत्म कर दिया। इस प्रकार से एक के बाद एक लगातार 6 साल में 6 बच्चे हुए, लेकिन प्रत्येक बालक को कंस आकर मार डालते, इतने क्रूर थे। तो ये 6 बच्चे थे कौन? भागवत में और अन्य ग्रंथों में बताया जाता है ये 6 जो बच्चे थे ये ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र थे। मरीचि एक प्रजापति थे जिनको प्रजा के संतान की उत्पत्ति के लिए कार्य सौंपा गया था ब्रह्मा जी ने। तो एक बार मरीचि के पुत्रों ने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया और इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया। यह ब्रह्म अपराध करने की वजह से उनको एक असुर के योनि में जन्म लेना पड़ा और योग माया के प्रभाव से ये 6 पुत्र मरीच के उनको काल नेमी नाम के असुर के पुत्र बनना पड़ा। अब ये काल नेमी के पुत्र ये वास्तव में हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक बार ये 6 पुत्र तपस्या करने गए। बहुत लंबे समय तक तपस्या की इन्होंने, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप ये आशीर्वाद हमें दीजिए कि कोई भी देवी देवता, किन्नर लोक के निवासी, गंधर्व लोक के निवासी, मनुष्य कोई भी हमारी हत्या नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और जब वो वापस चले आए और हिरण्यकश्यप को पता चला कि उनके पोतों ने जाकर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ली है, तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं जब इतना शक्तिशाली हूं, देवतागण मेरे नाम को सुनकर थरथराते हैं, कांपते हैं, तो देवताओं से रक्षा प्राप्त करने के लिए तुम लोगों को ब्रह्मा जी के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? जब मैं रक्षा करने में समर्थ हूं, मैं तुम्हारा दादा हूं, तो मेरे पास, मेरे शरण में आने के बजाय ब्रह्मा जी के शरण में क्यों गए? इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारा पिता जो कालनेमी है वो एक असुर बनेगा और तुम उसके पुत्र बनो और तुम देवकी के पुत्र बनोगे और ये तुम्हारी हत्या करेगा। और ये काल नेमी जाम का जो असुर था अगले जन्म में कंस बन गया। उस जन्म में भी काल नेमी की हत्या का वध भगवान विष्णु ने ही किया था। तो इस प्रकार से उनको देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो वास्तव में ये थे तो मरीचि के पुत्र और उनको जाना था स्वर्ग लोक वापस। तो देवतागण चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनको वापस बुलाया जाए। श्रीमद् भागवत में सुंदर वर्णन आता है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा भी छोड़कर चले गए और द्वारका में गए, अपने शिक्षण प्राप्त करने के पश्चात जब वहां राज कर रहे थे तो माता देवकी ने कृष्ण भगवान से कृपा याचना की, कहने लगे कि आपने आपके सद्गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमराज के दरबार से लौटा कर लाया है। इसलिए मेरे जो 6 पुत्र थे जिनकी हत्या कंस ने कर दी, इनको भी आप लौटा कर ले आओ। वसुदेव और देवकी जानते थे कि वास्तव में कृष्ण भगवान हैं। यशोदा माता और नंद बाबा वृंदावन में नहीं जानते थे। ये अंतर था देवकी में और यशोदा में। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम तुरंत गए सुतल लोक में, जहां बलि महाराज निवास करते थे। बलि महाराज को आपको याद होगा, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनको, उनके गर्व को, इनको अभिमान को खत्म कर दिया था। और बलि महाराज जब शरणागत गए, भगवान के शरण में गए, तो उस समय उन्होंने प्रार्थना की कि आप सुतल लोक में मेरे निवास के द्वारपाल रहोगे, और भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो कृष्ण और बलराम तुरंत गए बलि महाराज के पास में। उनको मालूम था कि ये 6 पुत्र जो हैं बलि महाराज के हवाले हैं। तो बलि महाराज से जाकर उन्होंने निवेदन किया, और बलि महाराज ने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि कृष्ण और बलराम की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो तुरंत उन्होंने उन 6 बालकों को लौटा दिया। ये 6 बच्चे अभी भी बाल रूप में ही थे, और कृष्ण और बलराम ने इन 6 शिशुओं को माता देवकी के हवाले कर दिया। उस समय माता देवकी के हृदय में ममता की भावना जागृत हुई, और उन्होंने इन 6 बालकों को स्तनपान कराना चाहा, और जब करा दिया तो बताया जाता है कि तुरंत इन 6 बालकों का उद्धार हो गया, क्योंकि देवकी माता ने कृष्ण भगवान के जन्म के बाद कृष्ण को गोकुल भेजने के पहले एक बार कृष्ण का स्तनपान कराया था। तो इसलिए माता देवकी का दूध जो है वो दिव्य अमृत बन चुका था, और इसलिए इस अमृत का पान जब इन 6 बालकों ने किया तो तुरंत उनका उद्धार हो गया, और उद्धार होकर फिर वो अपने पिता मरीचि के लोक में चले गए, जो कि अपना पुराना स्थान था। इस तरह से देवतागण भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये 6 पुत्र जो है मरीचि के लौट के आए, तो इसलिए उन्होंने ये आकाशवाणी बताई। तो उधर 6 पुत्रों की हत्या हो गई, और भगवान श्री कृष्ण के अंश बलराम माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर लिए उन्होंने, और योग माया से उन्होंने आदेश दिया कि आप संकर्षण या अनंत शेष जो मेरे अंश हैं, जो इस समय माता देवकी के गर्भ में निवास कर रहे हैं, उनको आप स्थानांतरित करो, और वृंदावन में वसुदेव की दूसरी पत्नी जो है रोहिणी देवी, उनके गर्भ में आप उनको रखो, और इसके बाद में मैं स्वयं माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करने वाला हूं, और तुम वहां पर माता यशोदा के गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्री के रूप में वहां जन्म ले लो। इसी प्रकार से तुम मेरी छोटी बहन बनोगी, और इस संसार में लोग तुम्हें अंबिका, चंडी, वैष्णवी इत्यादि ऐसे नाम से पुकारेंगे। तो योग माया ने ओम तत्सत कह के इस आज्ञा का पालन किया, और बलराम जी का जन्म रोहिणी देवी के गर्भ से थोड़े दिन बाद वृंदावन गोकुल में हुआ। उधर कृष्ण भगवान स्वयं प्रवेश कर चुके माता देवकी के गर्भ में। माता देवकी के शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर तेज देखकर कंस को तुरंत पता चला कि उनके शत्रु विष्णु माता देवकी के, उसकी बहन देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। कंस को 24 घंटे कृष्ण का स्मरण होता था, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे कृष्ण के बारे में स्मरण करते रहता कंस, कि कहां है कृष्ण, कब इसका जन्म होगा, कब जन्म होगा, कब मैं इसकी हत्या कर दूं। आकाशवाणी हुई है कि कृष्ण मेरे हत्या का कारण बनेगा। तो ऐसे 24 घंटे कंस कृष्ण का स्मरण करते थे, लेकिन आचार्य बताते हैं कि ऐसा स्मरण जो है वो भक्ति नहीं कहलाता है। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति वो होती है जब हम भगवान का प्रेम, भगवान की का स्मरण प्रेम भावना से करते हैं। इसलिए बताया जाता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? जब हम अनुकूल भावना से भगवान की सेवा करते हैं और हृदय में कोई अन्य अभिलाषा नहीं रखते हैं सिवाय भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से कंस का जो स्मरण था वो भक्ति नहीं कहलाता है। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि कोई व्यक्ति द्वेष भावना से भी क्यों न भला उनका स्मरण करे, उनका भी उद्धार कर देते हैं भगवान। भगवान ने इतने सारे असुरों का वध किया और सारे असुरों का उद्धार कर दिया। तो इस तरह से कंस इंतजार कर रहे थे उस दिन का जबकि इस बालक का जन्म होगा और उस बालक की हत्या वो कर पाए। कंस देवकी की हत्या करने के लिए घबरा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि गर्भवती स्त्री की हत्या करना ये बड़ा पाप है। पाप और पुण्य की भावना कंस के हृदय में भी थोड़ी बहुत होती थी, कभी कभी बीच बीच में उनके हृदय में ये भावना जो आती थी और हृदय को चुभ देती थी, और इसलिए कंस ने देवकी की हत्या नहीं की। उधर माता देवकी को पता चला कि कृष्ण मेरे गर्भ में आ चुके हैं और कृष्ण और वसुदेव दोनों के को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और एक रात ठीक 12 बजे जब सारे लोग सो रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से बाहर प्रकट हुए। माता देवकी को किसी हॉस्पिटल में मैटरनिटी होम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनको साधारण बालक के तरह जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि उनका जन्म और उनके कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो माता देवहूति के गर्भ से सीधे वो बाहर प्रकट हुए। जैसे साधारण बालक बाहर आते हैं वैसे नहीं आए, सीधे प्रकट हुए अंदर से बाहर। और बाहर प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? एक बालक के रूप में, लेकिन ये बालक बड़ा अद्भुत था। ये बालक के 4 हाथ थे, अर्थात भगवान ने अपने आप को विष्णु रूप में प्रकट कराया। और इसके घने बाल थे, काले काले घुंघराले बाल, कमल नयन, और उनका सुंदर शरीर नाना प्रकार के गहनों से आभूषणों से अलंकृत था। उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह था, उनके गले में कौस्तुभ मणि, उनके सर पे किरीट जिसके ऊपर वैदूर्य मणि थे, और उन्होंने पीतांबर पहना हुआ था। और इस प्रकार से भगवान ने दर्शन दिया देवकी और वसुदेव को। दोनों देवकी और वसुदेव आश्चर्यचकित रह गए, और वसुदेव तो इतने विस्मित हुए कि वो समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। बताया जाता है कि वसुदेव के आश्चर्यचकित होने के कई कारण थे। वसुदेव सोच रहे थे कि कंस ने तो 6 बच्चों की हत्या की है, कंस इतना क्रूर है, इतना भयानक भयंकर व्यक्ति है ये, लेकिन भगवान ने ऐसे जगह में जहां की कंस ने 6 बालकों की हत्या की है ऐसे जगह में जन्म लिया है जहां की इतना खतरा है, तो वसुदेव को आश्चर्य हुआ। दूसरा कारण ये था कि वसुदेव सोच रहे थे कि ये तो साक्षात भगवान है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और ये एक मनुष्य योनि में जन्म ले रहे हैं, एक स्त्री के गर्भ से बाहर प्रकट होकर इस संसार में आ रहे हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। और तीसरा कारण ये बताया जाता है कि वसुदेव सोच रहे थे कि ये तो मेरे आराध्य भगवान हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं, और ये अब मेरे बच्चे बन के आए हैं, ये कैसे अद्भुत बात है। तो वसुदेव पहले से ही जानते थे कि ये भगवान है। और फिर वसुदेव ने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की भगवान को, और अंत में देवकी भी कहने लगी कि आप तो साक्षात विष्णु हैं, आप हमारे पुत्र के रूप में आए हो, लेकिन आपका ये रूप जो है इतना अलौकिक है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चले तो तुरंत कंस आके आपकी हत्या करने का प्रयास करेगा। माता देवकी वास्तव में इस आठवें पुत्र को कंस के हवाले करना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह से इस बालक को छुपा दिया जाए। लेकिन ऐसे चार भुजाओं वाला बालक जिसके इतने बड़े बाल हैं, अलंकार हैं, ऐसे बालों को कहां छुपाया जा सकता है। तो इसलिए माता यशोदा सोच रही थी कि इसके पहले कि कंस को पता चले कि किसी बालक का जन्म हुआ है और साक्षात विष्णु प्रकट हुए हैं, इसके पहले ही भगवान विष्णु को साधारण एक बालक के रूप में अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए। तो इसलिए माता देवकी ने प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु, इस अलौकिक रूप को अभी और मत रखिए, अभी साधारण बालक का रूप धारण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु रूप में आए थे वो प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपको तो स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे स्मरण है कि आप कौन हो वास्तव में। बहुत पहले की बात है, सत्ययुग में जब सत्य स्वयंभू मनवंतर चल रहा था तो उस समय आप दोनों का नाम था सुतपा और प्रश्नी। आप प्रजापति थे और आपको संसार के भौतिक ब्रह्मांड के प्रजा की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने जिम्मेदारी सौंप दी थी, और आप मेरे परम भक्त थे। आप ने 10,000-12,000 वर्ष तक, देवताओं के लोकों के वर्ष तक आपने कड़ी तपस्या की, मेरे लिए प्रार्थना की कि मेरे जैसा पुत्र आपको मिल जाए। और जब मैं आपके सामने प्रकट हुआ तो मैंने ठीक समझा कि मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊं, और इसलिए उस समय मैं प्रश्नी गर्भ नाम से जाना जाता था। और उसके अगला जन्म आपको मिला अदिति और कश्यप मुनि का, और फिर उस बार मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया और मेरा नाम उस समय था वामन। बटु ब्राह्मण के रूप में मैंने जन्म लिया और ये तीसरा अवसर है कि मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूं, तो पहली बार नहीं है। और इस तरह से कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि ये आपका आखिरी जन्म होगा, इसके बाद में जब इस संसार में मेरी लीला समाप्त हो जाएगी फिर आपको मैं मेरे धाम में साथ में लेकर जाऊंगा, पुनः आपको यहां संसार में जन्म नहीं लेना होगा। और इसके बाद में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को अदृश्य कराया और बाल स्वरूप धारण कर लिया। और इस समय बहुत अद्भुत घटना हुई, सारे जो वहां के सिपाही थे वो गहरी नींद में सो पड़े, वसुदेव के हाथ पैरों में जो जंजीर थे वो टूट पड़े, खुल गए। वसुदेव को अंदर से प्रेरणा मिली, भगवान का आदेश मिला कि मुझे ले जाओ यमुना पार गोकुल में, जहां नंद महाराज की पत्नी यशोदा देवी गर्भवती हैं और वहां उनका पुत्र होने वाला, उनकी कन्या होने वाली है, और मुझे वहां रखकर उस कन्या को यहां ले आओ। और चमत्कार हुआ कि जेल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जंजीर खुल गए, सिपाही सो गए और बालक को एक टोकरी में रखकर टोकरी को अपने सर पे रखा वसुदेव ने, और वो चल पड़े। और बाहर जब चले, बरसात का मौसम था तो वर्षा हो रही थी, तो अपने प्रभु कृष्ण की सुरक्षा के लिए उनके ही अंश अनंत शेष ने नाग रूप धारण किया और वर्षा से उनको बचाया। आगे चलते गए वसुदेव, यमुना तक पहुंचे। यमुना जी में बहुत बाढ़ था, वर्षा की वजह से बड़ी बड़ी लहरें हो रही थीं। लेकिन बताया जाता है कि जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी को मार्ग दिया समुद्र ने लंका जाते समय, ठीक उसी प्रकार से यमुना मई ने भी मार्ग करके दे दिया वसुदेव को। यमुना जी का जल जो है अलग हो गया और वसुदेव कृष्ण भगवान को अपने सर पर रखे हुए यमुना पार करने लगे। बताया जाता है कि जब यमुना के बीच में ही थे तो तुरंत वहां पानी और बढ़ गया और वसुदेव के हाथों से बाल कृष्ण गिर गए। थोड़े क्षणों के लिए जब पानी में गिर गए तो नंद महाराज हैरान हो गए, प्राय वो प्राण को ही त्याग गए। सोच रहे थे कि कृष्ण कहां है, इधर उधर ढूंढते रहे पानी में, लेकिन कृष्ण कहीं मिले नहीं। और फिर चंद क्षणों के बाद में कृष्ण मिल गए। वसुदेव ने सोचा, नारायण ने ही मेरे कृष्ण को बचाया। हालांकि वो जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन प्रेम भावना इतनी तीव्र हो गई, वसुदेव के वात्सल्य भावना इतनी तीव्र हो गई कि इस बात को अभी वो भूल गए। और कृष्ण भगवान क्यों यमुना जी में गिरे? संसार में कोई पत्ता भी भगवान की अनुमति से नहीं हिलता, तो भगवान श्री कृष्ण का यमुना के जल में गिरना भी कोई चांस की बात नहीं थी, भगवान की इच्छा थी। तो क्या इच्छा थी भगवान की? भगवान वास्तव में चाहते थे कि वसुदेव के प्रेम को और तीव्र बनाएं, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की आदत है, थोड़ा बहुत अपने भक्तों को चिंता में हमेशा डाल देते हैं, ताकि ऐसे चिंता में उनको और कोई सहारा न रह जाए, केवल कृष्ण ही एक सहारा रहे। और दूसरा एक गुह्य बात था, ये था कि यमुना देवी चाहती थी कि मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करूं। अब जब वसुदेव टोकरी में कृष्ण भगवान को अपने सर के ऊपर रख के ले जा रहे थे, तो यमुना देवी सोच रही थी, मैं तो रास्ता दे रही हूं, लेकिन कृष्ण भगवान इतने ऊपर हैं तो कैसे स्पर्श किया जाए? तो यमुना देवी भी चाहती थी, तो यमुना देवी की इच्छा को समझ लिया भगवान ने और भगवान तुरंत पलट कर पानी में गिर पड़े। और जब वसुदेव को फिर कृष्ण भगवान मिल गए, तो फिर उन्होंने कृष्ण को फिर से टोकरी में रख दिया और नंद महाराज के घर में चले गए गोकुल में। उधर यशोदा माता गहरी नींद में थी, उनको यह भी नहीं पता चला था कि मेरा बच्चा जो हुआ है वो लड़का है या लड़की है। बालक ऐसे ही रो रहा था जैसे अभी रो रहा है, और माता यशोदा सोच रही थी, बालक को जन्म देने की पीड़ा से बहुत थक गई थी, गहरी नींद में थी। आचार्य बताते हैं एक बहुत गुह्य बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा, लोग इस बात को ज्यादातर नहीं जानते हैं। आम तौर से लोग यही जानते हैं कि माता यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया और देवकी के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया, वसुदेव ने कृष्ण को लिया, यशोदा मई के पास में रख दिया, योग माया को उठाया और मथुरा ले आए। लेकिन हरिवंश नाम के शास्त्र में बताया गया है कि वास्तव में यशोदा देवी ने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, योग माया का जन्म तो हुआ ही, साथ साथ कृष्ण को भी जन्म दिया। ये कृष्ण है यशोदा नंदन कृष्ण, श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण, जो कि गोकुल या वृंदावन के कभी बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। कृष्ण भगवान कभी भी वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं रखते हैं, तो भले वो मथुरा कैसे जाते। अगर मथुरा नहीं गए तो प्रश्न ये उठता है कि वो कौन से कृष्ण थे जो कि मथुरा के जेल में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जवाब है वो है वासुदेव कृष्ण, वो है देवकी नंदन कृष्ण। लेकिन वृंदावन में जो कृष्ण हुए वो है श्याम सुंदर कृष्ण, वो है यशोदा नंदन नंद नंदन कृष्ण। भाव में बड़ा अंतर है इनका। तो बताया जाता है कि जब वसुदेव यशोदा मई के कमरे में आए, जहां यशोदा मई गहरी नींद में थी, एक और योग माया एक कन्या के रूप में शिशु के रूप में थी, दूसरी ओर कृष्ण थे। वसुदेव ने कृष्ण को नहीं देखा, केवल योग माया को देखा। योग माया को उठाया, पहले देवकी नंदन कृष्ण को रख दिया, कृष्ण को योग माया को उठाया और चले गए। तो यशोदा के साथ में रहे कौन? मत भागवत की वाणी है। इसका क्या मतलब है कि भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान, अन्य और जो भी सारे विष्णु रूप हैं, अन्य सारे जो भी अवतार हैं, वो कृष्ण के अंश या उनके अंशों के अंश हैं। एते च अंश कलह पुंसः। तो भगवान श्री कृष्ण जो आदि स्वयं भगवान हैं, वो हैं यशोदानंदन कृष्ण, और यशोदानंदन कृष्ण से ही देवकी नंदन कृष्ण आते हैं, नारायण आते हैं, नरसिंह अवतार आते हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार, ये सारे अवतार जो हैं यशोदा नंदन कृष्ण से आते हैं। और जब यशोदा नंदन कृष्ण अर्थात स्वयं कृष्ण जब प्रकट होते हैं भौतिक संसार में, तो उस समय सारे अन्य अवतार उनके शरीर में मिलकर आ जाते हैं। विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं, नरसिंह देव आते हैं, सारे अवतार आ जाते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि ये जो देवकी नंदन कृष्ण थे, ये यशोदा नंदन कृष्ण के शरीर में मिल गए। मिल गए तो रहे कितने कृष्ण? एक ही कृष्ण। कृष्ण के ये अचिंत्य शक्ति और ये अचिंत्य विस्तार करने की जो शक्ति है, इसको हम हमारे भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। कृष्ण भगवान अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग कार्य कर सकते हैं, और इन कार्य ये कार्य जो हैं बड़े अद्भुत होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सब रात को सोए हुए थे, किसी को नहीं पता चला। जब नंद महाराज को पता चला कि बालक का जन्म हुआ है, लड़का है, सारी खबर जो है ब्रज में फैल गई, गोकुल में फैल गई, और सभी लोग बड़े आनंद से उत्साह मनाने की तैयारी में थे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, यशोदा नंदन बाल कृष्ण भगवान की, नंद नंदन की जय। तो इस प्रकार से इसी ही दिन, यही दिन, इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उधर वसुदेव योग माया को लेकर लौट कर आए मथुरा में। मथुरा में आने के पश्चात जैसे ही वो आए, तो खुद ब खुद योग माया की शक्ति से ही गेट दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव के हाथों पैरों में जंजीर लग गए, और जैसे ही कन्या के रोने की आवाज आई, सारे सिपाही जाग गए। दौड़ते हुए कंस के पास गए कि देवकी ने आठवें पुत्र को जन्म दिया है। वास्तव में ये कन्या थी, लेकिन आकाशवाणी में देवताओं ने यह कहा था अष्टम गर्भः, कि आठवां जो संतान होगा देवकी का वो तुम्हारी हत्या करेगा। भविष्यवाणी में ये नहीं था कि आठवां पुत्र होगा, केवल इतना था कि आठवां जो संतान होगा, आठवां बच्चा होगा, वो आपकी हत्या करेगा। तो कंस वैसे भी तो इस क्षण की अपेक्षा कर रहे थे, नींद हराम हो चुकी थी, और जैसे ही सुना कि जन्म दिया है देवकी ने एक बच्चे को, तुरंत अपने तलवार को हाथ में लिए दौड़ पड़ा कंस देवकी के पास में, उस बच्चे को हाथ में लिया और मारने ही वाला था, जब देवकी ने एक प्रार्थना की कि देखो आप मेरे बड़े भाई हो और ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तो कन्या है और वैसे मारने के लिए तो केवल एक लड़का होगा, लेकिन ये तो कन्या है, इसे क्षमा कर दो, इसे छोड़ दो, जब बालक होगा, जब लड़का होगा आप, तो उस समय मैं बालक को खुद तुम्हारे हवाले कर दूंगी। लेकिन कंस ने नहीं माना, उस बालक को, उस कन्या को उठाया और जैसे ही वो पीटने वाला था नीचे पत्थर के ऊपर, तो उस समय वो कन्या उनके हाथों से निकल पड़ी और ऊपर आकाश में जाकर दुर्गा देवी के 8 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया और कहने लगी कि हे मूर्ख, तुम इतने क्रूर क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे हत्या करने वाला और कहीं जन्म ले चुका है? और तुरंत वहां से दुर्गा देवी अदृश्य हो गई, कंस के पसीने छूटने लगे। तुरंत कंस ने अपने मित्रों को बुलाया कि देखो ऐसे बात है, ये कहां है, ये मेरा विष्णु कहां छुपा हुआ है? तो असुरों ने कहा कि सारे ब्रज भूमि में जो भी बच्चे हुए हैं पिछले 10 दिन में, इनकी हत्या हम करेंगे। और ऐसे कंस ने सारे असुरों को इधर उधर भेज दिया और सब जगह जाकर ये असुर छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने लगे। इस प्रकार से कंस अपने मृत्यु को और भी करीब बुलाते जा रहे थे। देवताओं ने, भगवान ने इस अत्याचार को रोका नहीं, क्योंकि अगर कंस पाप नहीं करते तो मृत्यु को पुकारते कैसे? जब कंस ऐसे पाप करते जा रहे थे तो मृत्यु के करीब चले जा रहे थे। और इस प्रकार से भगवान की योजना से ये सारे असुर सारे ब्रज भूमि में फैल गए, इधर उधर घूमने लगे, बालकों की हत्या करने लगे। और फिर तो आपको वो कथाएं मालूम है, पूतना गई, पूतना का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, और ऐसे सुंदर सुंदर घटनाएं हुई। सुंदर तो इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने अद्भुत कृपा का भी प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने सारे असुरों का उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट हुए। उनके प्रकट होने का कारण क्या था? भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमें यह संसार के भोग से दूर ले जाकर उनके चरण कमलों के स्वाद को हमें वो दिलाएं। वो आकर यहां पर उनके धाम में जो लीलाएं चलती हैं उन्हीं को यहां प्रदर्शित करते हैं ताकि हम समझ लें। जिस प्रकार से एक सिनेमा दिखाने के पहले ट्रेलर दिखाते हैं ताकि हमें पता चले कि सिनेमा में क्या दिखने वाला है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब ये भौतिक संसार में प्रकट होते हैं, अपने पार्षदों के साथ में आते हैं, तो सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकट इसलिए करते हैं कि यहां के जो जड़ आनंद के आपको प्राप्त करने के लिए जो उत्सुक जो लोग हैं वो इन लीलाओं के प्रति आकर्षित हों और समझें कि भगवान के धाम में कैसे कार्य चल रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने जब इस सुंदर कथाएं सुनी तो सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे कि कितनी अच्छी बातें हैं ये, कौन है वो क्रूर व्यक्ति जो कृष्ण कथा में जो रुचि नहीं लेना चाहता है? सूत गोस्वामी आगे नैमी शरण में एकत्र हुए सारे ऋषि मुनियों को भी कहने लगे, पिबंति ये भगवतात्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ऋषि मुनिगण, कृष्ण भगवान ने ये संसार में आके ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, इन लीलाओं का श्रवण करो, कीर्तन करो, इसका रस पान करो। पिबंत ये भगवत आत्मनः सताम, क्योंकि भगवत आत्मनः सताम, वो भक्त जो कि भगवान के बहुत प्रिय हैं, वो ऐसे कथाओं का श्रवण करते रहते हैं, कथामृतम, कथा के अमृत का पान करते रहते हैं, श्रवण पुटेशु संभृतम, वो ये कृष्ण कथा अपने कान में भर भर के डाल देते हैं और पुनन्ति, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर क्या शुद्ध हो जाता है? विषय विदूषिताशयम, ये संसार को भोग करने की जो भावना उनके हृदय में है वो खत्म हो जाती है। व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम, और फिर वो चले जाते हैं भगवान के धाम में, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, और भगवान श्री कृष्ण के नित्य संग की प्राप्ति कर लेते हैं। तो देखिए, ये कृष्ण कथा, कृष्ण लीला का श्रवण कीर्तन का मार्ग कितना लाभदायक है, कितना मधुर है। कोई भी व्यक्ति जो गलती से भी कृष्ण का नाम सुनता है, कृष्ण की कथाएं सुनता है, द्वेष भावना से भी जो कृष्ण का स्मरण करता है, उसको लाभ होता है। तो जो व्यक्ति भक्ति भावना से इन कार्यों को करता है, सब कुछ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए अर्पण करके करते हुए श्रवण कीर्तन करता है, तो उसको कितना लाभ मिल पाएगा, ये हमारे लिए सोचने की बात है। इस प्रकार से भक्ति मार्ग जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुलभ है। कलयुग में यही एक उपाय हमारे पास है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो है भगवान श्री हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। जो चीजें सत्युग में लंबे लंबे समय तपस्या करने के प्राप्त होती थी, जो चीजें द्वापर युग में बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली मंदिर में भगवान की उपासना करने से प्राप्त होती थी, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही प्राप्त होता था, होता है। ये भगवान का वरदान है कलयुग के निवासियों के लिए। तो सभी को ये कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन का मार्ग जो है ये स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा चलती रही, चलती रही। परीक्षित महाराज ने पूरे 7 दिन खत्म किए, और जब खत्म किए तो फिर कहने लगे सुखदेव गोस्वामी से कि अब मैं तैयार हूं प्राण त्यागने के लिए, क्योंकि आपकी कृपा से आपने मुझे इतना कृष्ण कथा का रसपान कराया है कि अब मैं निर्भय बन गया हूं, अब मृत्यु का सामना करने के लिए मुझे कोई कठिनाई नहीं है। आने दीजिए उस सांप को जो मुझे काटने वाला है, उस 12 साल के ब्राह्मण की शाप की वजह से मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं केवल कृष्ण के कथा का अमृत पान करते रहना चाहता हूं, और इसके बाद निश्चित आपकी कृपा से मैं भगवान के धाम में लौट के जाऊंगा। तो कृष्ण कथा का पान करना, अमृत का पान करना, देखिए कितना लाभदायक होता है, कितना सरल भी है। इस कलयुग में भगवान का नाम तो लेना चाहिए, लेकिन विशेष करके ये हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व है, जो कि कली संतरण उपनिषद में बताया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। तो आप सबसे निवेदन है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग स्वीकारें, कृष्ण भक्तों के संग में आएं, कृष्ण कथा सुने, इन दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करें, और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्णा, जय वृंदावन,
जय वृंदावन,
जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, ऋषि घाट वंशी वट द्वादश कान, केशिघाट वंशी वट द्वादश कान, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंद, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंद, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री दमादि जय जय धेनुवत्सगण, श्रीदमादि जय जय धेनुवत्स गण जय वृषभानो जय कीर्तिदा सुंदरे जय वृषभानो जय कीर्तिदा सुंदरे जय पौर्णमासी जय अभिरनगरे जय पौर्णमासी जय अभिरनगरे जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंद जय जय वृंदावन वासी यत जन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण